ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सतत भविष्य के लिए प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर शिशिर सिन्हा, महानिदेशक सिपेट, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
डॉक्टर शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद
डॉक्टर साहब। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है?
हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि प्लास्टिक आज का हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन चुका है, क्योंकि बहुत वजहों से इसकी अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है कि इसका जो निस्तारण है, जो स्वाभाविक निस्तारण, जिसे कि हम लोग डिग्रेडेशन बोलते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वस्तुतः ये एक इनर्ट मटेरियल है, जिसकी वजह से इसका निस्तारण जो है वो लगभग जो है बहुत दीर्घकालीन है और मुश्किल से होता है। तो इसलिए ये एक, जिसे मैं हम लोग कहते हैं कि नगरीय व्यवस्था में लोग जो है इधर उधर छोड़ देते हैं, उस वजह से जो है इसमें इसके साथ बहुत सारी दिक्कतें, जैसे लिटरिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसके प्रबंधन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात पर है कि हमें इसका रिसाइकिलिंग और रीयूज को प्रमोट करना है। दूसरा क्या है कि इसके लिए हमें अलग अलग तरीके, क्योंकि भांति भांति के जो है प्लास्टिक इस समय आते हैं, जिस तरीके का यूज है उसको देखते हुए हर तरीके के, करीब आज की तारीख में करीब करीब 1000 तरीके के, विभिन्न तरीके के प्लास्टिक जो है वो उपलब्ध है। तो उनका अलग अलग, जिसे कहते हैं सेग्रीगेशन, बहुत जरूरी है। और साथ में चूंकि जब ये लिटरिंग और जो ग्राउंड वाटर और मैरीन लाइफ और मिट्टी में जो जाते हैं, और साथ में जो हमारे गाय और जो पशु हैं वो भी इनको लेते हैं, तो इस तरीके से ये एक तरीके से, जिसे कहना चाहिए, सोसाइटी के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो इसलिए इनके प्रबंधन की एक उचित व्यवस्था जो है जरूरी है, और इसमें इनका अलग अलग करना, जिसे सोर्स सेग्रीगेशन कहते हैं, और उसके साथ साथ इनका निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से अत्यंत आवश्यक है।
जी डॉक्टर, प्लास्टिक कचरा निपटारे के फिलहाल कौन कौन से उपाय हैं और किन अन्य उपायों पर भी फिलहाल काम किया जा रहा है या किया जा सकता है?
देखिए, प्लास्टिक कचरे के निपटारण को अगर हम एक ब्रॉड ग्रुप में देखें तो दो तरीके के हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसके लिए मैकेनिकल जो है वो आपका ग्रेनुलाइजेशन है, जिससे कि प्लास्टिक, जो वेस्ट प्लास्टिक है, उसमें हम लोग ग्रेन्यूल्स बना के दोबारा वो प्रोसेस में डालते हैं, जिससे कि वो यूजफुल प्रोडक्ट बन सके। दूसरा एक हमारा थर्मल रूप है, जिससे कि हम उनको पिघलाकर दूसरे जो यूजफुल चीजें हैं उसको जो है हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा जो है, जो कि रिसाइकलिंग के तौर पर ले जाके उनको जो है, जो वर्जिन प्लास्टिक है उसके साथ ऐड करके, ताकि जो है वो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट उससे हम बना सकें। ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। साथ में एक पायरोलिसिस भी है, जिससे कि हम लोग, जो कि आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, पायरोलिसिस में उससे जो है वैक्स या जो है हम लोग लुब्रिकेंट और साथ में जो है फ्यूल ऑयल सब्स्टिट्यूट भी तैयार कर सकते हैं, जिससे कि जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट में जो है वो तैयार हो सकते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें कि जो आपके रैक पिकर्स हैं, जो कबाड़ी वाले हैं, या जो एक अशिक्षित तबका है, वो लोग जो है इसको एक तरीके से, जिसे कहना चाहिए कि इसको जला के या गर्म करके, हीट करके उससे करते हैं, जिससे वातावरण में प्रदूषण फैलता है। तो आज की तारीख में हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि प्लास्टिक रिसाइकिलिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्लास्टिक 100% जो है, प्लास्टिक का निस्तारण, 100% प्लास्टिक का रिसाइकिलिंग संभव है। लेकिन इसमें सबसे जो दिक्कत वाली चीज है वो है मल्टी लेयर प्लास्टिक, जो कि हमारे पैकेजिंग मटेरियल में यूज होती है, क्योंकि ये हल्की होती है और इसको जो है एकत्र करना एक बड़ी भारी समस्या है। तो ये एक दुविधा का विषय है और एक दुख का विषय है कि इसके बारे में अभी बहुत गंभीरता से समाज नहीं सोच रहा है, जिसकी महती आवश्यकता है।
जी डॉक्टर साहब, आप देखिए कि आज के दौर में अगर हम एक चिप्स का पैकेट लेते हैं, बिस्किट का पैकेट लेते हैं, दूध का पैकेट लेते हैं, सब प्लास्टिक के उत्पाद हैं और रोजाना की दिनचर्या में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो किस तरह से लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सकता है और इसमें सरकार की किस तरह, जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनाइज और निजी क्षेत्र दोनों की बराबर भूमिका होगी, तो उसको जरा सा समझाएं।
पहली चीज तो हमको ये समझनी होगी कि हम एक क्षण भी प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। चश्मे से लेके, दवाइयों से लेके, कपड़ों से लेके, हर प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। दूसरी बात यह है कि इसका, जिसमें समाज के लोगों को एक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि ये जो पैकेजिंग मटेरियल है या दूध का पैकेट है, इनकी भी एक कॉमर्शियल वैल्यू है। केवल इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनको एकत्र करना सबसे बड़ी एक समस्या है, क्योंकि हम लोगों में जो सिविक साइंस का थोड़ा सा अभाव है कि हमने बिस्कुट का पैकेट खोला और बिस्कुट खाया और उसको एज सच जो उसका पैकेजिंग मटेरियल सड़क के किनारे डाल दिया, इससे जो है बहुत ज्यादा जो है समस्या पैदा होती है। आप विदेशों में जाइए, वहां पर आप कोई भी यदि आपने टॉफी भी खरीदी उसको खाया और साथ में जेब में डाल दिया रेफर, जहां पर हमें डस्टबिन मिला वहां पर हमने डाला, यहां पर आते ही हम उस तरीके का सिविक सेंस भूल जाते हैं। देखिए यदि ये एकत्र किया जा सके और यदि एकत्र करके हमारे पास बहुत सारे रिसाइकलर्स हैं जो कि इनके द्वारा उपयोगी चीज बनाते हैं, मैंने बहुत सारे हमारे यहाँ संस्थान में भी बहुत से जो छात्र हैं या बहुत से हमारे यहाँ शिक्षक हैं वो लोग इनसे कुर्सी मेज ये सब चीजें बनाते हैं और अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि सरकार को इस तरीके से सेग्रीगेशन, इस तरीके से कलेक्शन, इनके बारे में प्रोत्साहन देना चाहिए और इसमें सिपेट ने बहुत एक भूमिका निभाई है समाज के लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। हम लोग बच्चों के स्कूल में छोटे छोटे जो है प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं जिसमें कि उनको एक प्लास्टिक की बोतल देकर उसमें कहते हैं कि आप जितना भी इस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल जो प्लास्टिक का उसको आप इकट्ठा करें और उसको जिसका सबसे ज्यादा वजन होता है उसको हम लोग पुरस्कृत करते हैं। सरकार को की योजनाओं के बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि लोग उसको जो है आत्मसात ना करें और इसमें आत्मसात करने में हम सबका सहयोग अनिवार्य है। सरकारी तौर पर बहुत सी चीजें उठाई गई हैं, उनमें उन्होंने जो है हर जगह पर प्रोत्साहन की योजनाएं हैं, हर इंडस्ट्री के लेवल पर लोगों को जो है इस बात को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इन चीजों को जो भी अपशिष्ट है, प्लास्टिक अपशिष्ट है उसको अपने रिसाइकिलिंग में डालें, उपयोगी प्रोडक्ट बनाएं। इन सब चीजों के लिए सरकार बहुत सा प्रोत्साहन दे रही है और लोगों में अवेयरनेस फैला रही है।
आप क्या समझते हैं कि जो लोगों में जागरूकता फैलाने की बात है तो इसमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है?
अवश्य बिल्कुल, इसमें बहुत आपने बहुत ही उपयोगी सवाल किया है क्योंकि देखिए निजी क्षेत्र का बहुत महत्व है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दूं, एक बहुत सारी एडवाइजरी हर जगह पैकेट पर लिखी होती है कि ये एक रिसाइकिल्ड मटेरियल है। लोग हम लोगों से पूछते हैं कि कैसे इसको रिसाइकिल किया जाता है। दूसरा क्या है कि जैसे बहुत सारे निजी क्षेत्र के जो जैसे बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग, टॉफी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी इस चीज को प्रोत्साहित करें कि हम आपके जो रैपर है या प्लास्टिक की जो बॉटल है उसको हम वापस लेंगे प्रोवाइडेड कि, और इससे हम आपको कुछ जो है आपको इंसेंटिव देंगे तो अवश्य इसमें। और दूसरा निजी क्षेत्र के जो उत्पादक हैं, जो इस तरीके के पैकेजिंग मटेरियल के या प्लास्टिक प्रोडक्ट के उत्पादक हैं, उसमें जो है उनका उनको भी आगे आना चाहिए। और वास्तव में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ तकनीकी रूप से कि भारत सरकार ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो योजना लागू की है जिसमें कि उनको एक निर्धारित मात्रा में जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट या प्लास्टिक के प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक निर्धारित मात्रा में प्लास्टिक को जो रिसाइकिल करना पड़ेगा। और उससे क्या है कि डाउन द लाइन लोगों में अवेयरनेस फैल रही है कि हाँ प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसका जो काफी उपयोगी है, लेकिन यदि हम उसका एक सही तरीके से उपयोग करें और साथ में जो अपशिष्ट है उसको भी जो है हम लोग सही तरीके से करें। और मैं हमेशा एक बात को एडवोकेसी करता हूं कि लोग बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की, हम ये कहते हैं कि प्लास्टिक वेल्थ मैनेजमेंट है। उससे क्या है कि जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो भी वेल्थ का प्लास्टिक निकल रहा है जिसको कि हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं वो किसी और उद्योग के लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। और आप देखिए जगह जगह हर शहर में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए केंद्र खुल रहे हैं जहां पर जो ग्रैन्यूल्स है वो कम कॉस्ट के हैं या जो फ्यूल प्रोड्यूस हो रहा है वो कम कॉस्ट का हो रहा है। जितनी भी पेट बॉटल्स हम लोग पानी की बॉटल इस्तेमाल करते हैं उसको यूज करने के बाद उसके फाइबर्स बन रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो जो वेस्ट प्लास्टिक की एक जैकेट पहनी थी और उसको भारतीय संसद में गए थे वो, तो ये इस तरीके की चीजें जो है ना, और ये सब निजी क्षेत्र के आगे बढ़ने से हो रहा है तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो निजी क्षेत्र इसमें काफी, और वो बहुत सारे सीएसआर में भी जो है इन चीजों पे अवेयरनेस फैला रहे, साथ में वो एक चीज पर और भी ध्यान दे रहे हैं निजी क्षेत्र के लोग कि क्या हम इसका एक सब्स्टिट्यूट तैयार कर सकते हैं जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या जो लोकल जूट के बने जो पदार्थ है क्या हम उसको जो उपयोग कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र में काफी आगे ये लोग पढ़ रहे हैं।
डॉक्टर सिन्हा एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने भी बताया कि सार्वजनिक तौर पर भी इसकी अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, तो पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर या सार्वजनिक स्थल पर मैंने देखा था कि आप वहां पर जिस तरह आपने कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कुछ प्रोत्साहन देने की भी सरकार की पहल रही है। वहां पर मैंने देखा कि इस तरह की मशीनें लगाई गई हैं कि आप वहां पर अगर प्लास्टिक की बोतल डालते हैं तो आपको उसका इंसेंटिव मिलता है। इस तरीके में निजी क्षेत्र के साथ साथ जैसा आपने अभी जिक्र किया कि सीएसआर में भी इस तरीके को शामिल किया गया है, किस तरीके से दोनों क्षेत्र मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं?
इसमें क्या है, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, क्योंकि देखिए जैसे आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया रेलवे स्टेशन पर, और मैं बहुत दक्षिण भारत में देखता हूँ बहुत जगहों पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक स्थानों पर निजी क्षेत्र ने इस तरीके की चीजें लगाई है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि इस्कॉन टेम्पल में मैं गया था, वहां पर उन्होंने प्लास्टिक जो बॉटल को रिसाइकिल करने की एक मशीन छोटी सी लगा रखी थी जिसमें वो कलेक्ट करती थी, उसके साथ एक उनको QR कोड का कूपन मिलता था, कैंटीन से वो कुछ भी चीजें खरीद सकते थे। इस तरीके से इसी तरीके से जैसे उत्तराखंड सरकार ने भी पहल करी, उन्होंने जो प्लास्टिक की बोतल, जो चार धाम यात्रा होती है उसे जो प्लास्टिक की बोतल आप ले जाते हैं उस पर एक स्टिकर चिपकाते हैं और उसको किसी इस्तेमाल करने के बाद किसी भी दुकान से आप उसके एवज में जो है वो आप धनराशि ले सकते हैं। लेकिन मेरा एक इस चीज में सबसे बड़ा मानना एक ये है कि जब तक हम लोग अपनी प्राइमरी एजुकेशन में इस चीज, प्राथमिक शिक्षा में इस चीज को नहीं शामिल करेंगे तब तक ये चीज जो है हमारे समाज में आत्मसात नहीं होगी। और इसके लिए हम लोग बहुत सारा स्कूल लेवल पर कार्यक्रम चला रहे हैं, उनको प्रतियोगिताएं आयोजित करना और साथ में बच्चों को इंसेंटिव हम लोग दे रहे हैं इस बात पर कि जितना वो आसपास, अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, मैं सोसाइटी में गया वहां पर जो था छोटे बच्चों से हम लोग बात कर रहे जिसको कि हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, उसमें हम लोगों ने खाली प्लास्टिक की पानी की बोतल 1 लीटर की उनको दे दी थी बच्चों को कि जो बच्चा सबसे ज्यादा प्लास्टिक उसमें इकट्ठा करके हमको देगा उसको हम लोग पुरस्कार देंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे साहब कि वो करीब 60 फ्लैट की सोसाइटी थी, उसमें कहीं पर भी जो प्लास्टिक का कचरा हम लोग को देखने को नहीं मिला। अब उससे देखिए दोहरा फायदा हुआ, पहला फायदा तो ये हुआ बच्चों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि वो प्लास्टिक को हम लोग किस तरीके से प्लास्टिक से निजात पा सकते हैं कूड़े से। दूसरा क्या हुआ कि जो हमारा कलेक्ट किया हुआ प्लास्टिक था वो हमने प्लास्टिक शोधन संयंत्रों में भेज दिया जिससे उनको एकत्र करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और साथ में उनको सेग्रीगेटेड वेस्ट मिला। तो इस तरीके की पहल जगह जगह बहुत जरूरी है और इससे जो है सोसाइटी में भी लोगों में अवेयरनेस फैलती है। तो इस तरीके से और उसमें बहुत सारे जो है जो संस्थान निजी क्षेत्र के साथ में सरकारी क्षेत्र के संस्थान हम लोगों के साथ आ रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं।
दिल्ली में भी प्लास्टिक रिसाइकिलिंग और कचरा निपटान पर एक वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, क्या मकसद है इसका और इसके किस तरीके के नतीजे मिलने की संभावना है?
देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि प्लास्टिक जो आपका वेस्ट है उसके बारे में एक वैश्विक स्तर पर गंभीरता से लोगों ने सोचना शुरू किया है। अब क्या है कि बहुत सारी प्रयोगशालाओं में जैसे भारत में भी IITs में NITs में और संस्थानों में बहुत सारा कार्य हो रहा है, निजी क्षेत्र में भी बहुत सारा कार्य हो रहा है जिसमें कि नए नए संयंत्र बन रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मैंने जैसा आपको बताया कि रोजमर्रा के कार्यों में करीब करीब हम लोग 1000 तरीके से जाने या पहचाना जाने हम लोग 1000 तरीके के प्लास्टिक के अलग अलग तरीके के प्लास्टिक की चीजों से जो है वो आपस में वो हम उनका इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे दवा की पन्नी को ले लें, चाहे कपड़ों को ले लें, चाहे टूथब्रश को ले लें, चाहे चश्मे के लेंस को ले लें, किसी को भी आप ले लें, लेकिन उसमें सब और उसके बाद जब वो हमारे उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि PVC भी है उसमें, आपका PET भी है उसमें, पॉलीएथिलीन भी है। अब इनको अलग अलग करना एक सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि यदि आप थर्मल वे से PVC को करेंगे तो उसमें वातावरण में प्रदूषण फैलेगा जो कि एक समस्या को आप खत्म करने के चक्कर में आप दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं। तो ये जो इस तरीके के इस पर बहुत सारा विश्व स्तर पर शोध हो रहा है, साथ में जब से भारत सरकार ने या अन्य देशों की सरकार ने प्लास्टिक कचरा निस्तारण की अपनी अपनी योजनाएं अपनी पॉलिसी इसमें जब शुरू करी है तो उसमें लोगों के बारे में लोगों को जागरूकता, अभी तक तो ये था कि इसका चूंकि प्रबंधन नहीं हो सकता लेकिन जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 100% इसका निस्तारण संभव है प्रोवाइडेड कि ये हमको सेग्रीगेटेड मिल जाए
जी,
तो इसके बारे में जो मशीन निर्माता है साथ में बहुत सारे जो प्रयोगशालाओं में जो कार्य हो रहा है जो शोधार्थी हैं उनके पास कौन कौन सी जानकारी है जिसको कि वो शेयर करना चाहते हैं, आम जनता जिसको कि इसके बारे में अवेयरनेस चाहिए कि भाई वास्तव में समस्या है तो उसका निस्तारण संभव है, तो इन सब चीजों के लिए इस तरीके से ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजित करना बहुत ही जरूरी है।
जी डॉक्टर सिन्हा, इस महत्वपूर्ण और उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे सतत भविष्य के लिए प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर शिशिर सिन्हा महानिदेशक सिपेट और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।